مفاہمت نہ سکھا جبر نہ روا سے مجھے، میں سر بکف ہوں لڑا دے کسی بلا سے مجھے۔ جی لائک فادر لائک سن، ہم بات کر رہے ہیں ساحل ادیم کی۔ سر کیسے مزاج ہیں؟
ٹھیک ٹھاک ہے۔
یہ نظم میں نے آپ سے پوری سننی ہے، یہ غزل۔ ہاں لیکن مجھے بتائیں کہ والد صاحب آپ کے، ادیم ہاشمی صاحب، سب ہی فیملی پوری ایک اس طرح کی اگریسو مائنڈ سیٹ کی، اگریسو تھاٹ والی؟
یا یا۔
اینڈ واٹ واز دا ریزن بیہائنڈ دیٹ؟
آئی تھنک اٹس، میں مطلب جینیٹک ہے جی میرے، میں ابھی سوچ رہا تھا دادا حضور بھی ہمارے کافی اگریسو تھے۔
اچھا، تو کوئی یادیں والد صاحب کے ساتھ جب، کیا آپ کا جب جہاں پاکستان میں تھوڑے سے حالات ان کے حساب سے تھوڑے سے ذرا انفارچونیٹ ہوئے، یو شفٹڈ ٹو یو ایس اے، کیا کیا سچویشن تھی، کیا کہانی تھی، کیا ہوا وہ؟
ایکچولی اگریسو تو ایک ایکسپریشن ہے، آؤٹ لیٹ تھا۔ ہی واز اے ویری ایموشنل پرسن۔
اوکے۔
آل آف مائی سبلنگز آر ویری ایموشنل۔
اچھا۔
یا تو یہ ایک ایسا بس بس خون میں یہی اثر اتنا واضح تھا کہ ہی مطلب بہت فیل کرتے تھے، اور بڑا ڈیپ ایکسپریشن رہتا تھا ان کا جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا تھا، کوئی بھی واقعہ ہوتا تھا۔ سات ہارٹ اٹیک ہوئے تھے ان کو،
سات ہارٹ اٹیک،
سیونتھ واز دا لاسٹ۔ تو اٹس پریٹی ایویڈنٹ ہی واز ویری ایموشنل، وہ ہر چیز کو دل پہ سچا سے، وہ میں جو کچھ ہوں وہی کچھ ہوں، جو ظاہر ہے وہ باطن ہے، کسی جھوٹی انا سے دل کو بہلانا نہیں آتا۔ اٹس سو ٹرو اباؤٹ ہم۔ جو مطلب اتنی جو شدت تھی نا، وہ وہ جینون تھی، اور وہی تھی جیسے وہ، جیسا ان کا کلام ہے، تعلق توڑتا ہوں تو مکمل توڑ دیتا ہوں، جسے میں چھوڑ دیتا ہوں اسے میں چھوڑ دیتا ہوں،
اسے میں چھوڑ دیتا ہوں،
یقین رکھتا نہیں ہوں میں کسی کچے تعلق پر، جو دھاگا ٹوٹنے والا ہو اس کو توڑ دیتا ہوں۔ تو یہ یہ ایسے ہی ہے، میرا باپ بالکل اسی ٹرو عکاسی، صحیح سچی عکاسی ان کے کلام میں ان کی پرسنالٹی۔
واہ۔ تو یہاں پہ کیوں، کیا حالات ہوئے، کیا سچویشن ہوئی ایسی کہ ان کو چھوڑ کے جانا؟ ایسا بندہ تو پھر چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، وہ تو کہتا ہے کہ پھر میں ہوں یہاں پہ۔
نہیں، چھوڑ کے تھوڑی گئے تھے، وہ تو نکالے گئے تھے۔
نکالے گئے؟
جی جی، ہی واز ایگزائلڈ۔
ہی واز ایگزائلڈ۔
جی ہاں، وہ کیا غزل ہے، اسی لیے تو ہم ان کی چال میں آئے، وہ گرگ تھے مگر انسان کی کھال میں آئے۔ یہ انہوں نے 71 کی وار کے بعد جو واقعہ بنگلہ دیش کا ہوا تھا نا، اس کے اوپر انہوں نے عکاسی کی تھی۔ گرو تو ساتھ گرے شان شہ سواری بھی، زوال آئے تو پورے کمال میں آئے۔ تو یہ ایک ایسا، دس میں جتنا بھی زیادہ ابا جی کا کلام پڑھتا ہوں اتنا ہی مجھے وہ دن یاد آتے ہیں جو الگ الگ پرسنل لائف کے، کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا جیسا لکھا ہوا ہے ویسا ہی ہو رہا تھا ان کے اندر، وہی کچھ چل رہا تھا جو جو باہر لکھ رہے تھے۔ وہ آئی تھنک دس از وائی موسٹ آف مائی لائف ہمیں وہ انرجی دیتے رہے باپ۔ مجھے یاد ہے میں اسکول میں تھا تو میرے پرنسپل نے نا ابا جی کو بلا لیا، میں نے پتہ نہیں کس بندے کے ساتھ کیا کہہ دیا تھا، اب مجھے یاد نہیں میں نے کیا کہا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا تھا، تو بڑی کمپلین ہوئی تھی میری، اور میں پرنسپل نے مجھے بلایا تو میرے ابا جی بیٹھے ہوئے تھے پرنسپل کے آفس میں، اینڈ ہی نیور مطلب اسکول نہیں کبھی آئے تھے وہ، تو میں نے ان کو دیکھا تو میں نے سمجھا شاید مجھے لینے آئے ہیں کہیں جانا ہے۔
اچھا، ویسے ہی آئے ہیں؟
جی ہاں۔ تو پتہ چلا میری شکایت لگی ہوئی ہے۔
اوپس۔
تو وہ کمپلیننٹ بھی وہاں پہ موجود تھے، تو میرے پرنسپل نے کہا واٹ ڈیڈ یو سے ٹو دیم، اینڈ آئی سیڈ واٹ ڈو، کیا کلیم کر رہے ہیں، میں نے کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے، میں نے ان کے ان سے یہ بات کی ہے، تو ایسے ہاں میں نے یہ کیا ہے، بات صحیح کہہ رہے ہیں،
ہاں صحیح کہہ رہے ہیں،
تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ تو مجھے وہ دن یاد ہے، ابا جی کا وہ جملہ یاد ہے، ہی اسپوک ٹو مائی پرنسپل اینڈ ہی سیڈ کین یو ناٹ اپریشیٹ دی آنیسٹی آف دس بوائے دیٹ ہی از ناٹ ڈینائنگ اٹ، ایون دو آرگیومنٹ کین بی میڈ دیٹ ہی از رانگ اور رائٹ، بٹ ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹو ہائیڈ بیہائنڈ اینی فالسہڈ۔ اور تب مجھے پتہ چلا کہ میرا تو مسئلہ تو کافی مطلب پرنسپل لیول تک بات ہے۔ تو بچے کو جب اس طرح باپ کانفیڈنس دیتا ہے نا، تو وہ پھر دنیا پتہ کرتا ہے، بس باپ ساتھ کھڑا ہو تو بچے، میں وہ کیسے بتاؤں، دنیا میں زیادہ تر لوگ، اب تو میں نفسیات پڑھ پڑھ کے مجھے پتہ چلا کہ زیادہ تر لوگ اس لیے کچھ کر نہیں سکے کہ ان کے ماں باپ نے ان کو پیچھے سے دلاسا نہیں دیا تھا، صحیح موقع پہ انہوں نے کنسٹرکٹ نہیں کیا تھا۔ اٹ از دیٹ سمپل۔ جن لوگوں نے मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि माँ बाप नहीं करेंगे तो बच्चे नहीं कुछ कर सकेंगे, करते हैं, मगर शरा इतनी कम है ना। सबसे बड़ी ताकत थी वो बाप की थी,
बाप
वो
की
मिल जाए
ताकत।
तो आप सुपर हीरो हैं, यू आर द सुपर हीरो, अगर बाप आपका वो कंस्ट्रक्ट कर गया तो फिर यही हुआ। फिर वो क्या, मेरे अब्बा जी ने जगाना की ज़मीन में गज़ल लिखी है कि शब व रोज़ खोश आए अश्क से मेरी किश्त चश्म भरी रही,
वाह
ये अजीब खेत की फसल थी जो हरी हुई तो हरी रही,
वाह वाह वाह
कभी ना दुरुस्त के सामने मेरा सर अदीम झुका नहीं, कभी ना
ना
दुरुस्त के
दुरुस्त के
सामने
सामने मेरा
मेरा
सर
सर
अदीम
अदीम झुका नहीं,
झुका नहीं।
मैं वो दीदावर मेरी आँख में यही एक दीदावरी रही। तो ये इट्स नॉट जस्ट कि मेरे खून में ये या हमारे भाइयों में जेनेटिकली एक यू नो असर्टिवनेस आ रही थी, बट द वे ही कंस्ट्रक्टेड द होल यू नो मशीन इन ऑल ऑफ अस थ्रू हिज एक्शंस। और खाली मतलब घर पूरा हो और अम्मा ना साथ हो, बेगम आपके उस मिशन में साथ ना हो तो फिर नहीं काम हो सकता।
नहीं
तो
हो
ये
सकता।
वालदाओं के लिए, अम्मियों के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, माई मदर वॉज एंड जिस अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शी इज़ स्टिल शी नेवर सेज नो टू द यू नो डिसीजंस ऑफ हर सन्स एवर सिंस आई वाज यंग, तब से
डिसीजंस ओवर हर सन्स। आई वाज थिंकिंग कि यू विल से कि डिसीजंस
हर सन्स
हर हस्बैंड।
सन्स शी
नो
बिलीव्ड,
सन
शी बिलीव्ड
वाओ
बचपन से शी बिलीव्ड कि इसने किया है तो कुछ सोचा ही होगा, इसके कुछ कुछ सोचा ही होगा, ऐसे नहीं मेरा बेटा ऐसे या मेरे बेटे ऐसी हवाई तुक्के नहीं मारते। सो इट वॉज लाइक अ सपोर्ट। फिर दुनिया में जो मर्जी सामने आ जाए फिर नहीं, बच्चा नहीं कुछ सोचता कि।
और ये वो तरबियत थी शुरू की वालदैन की, जो बिल्कुल इनिशियल ब्रॉट अप जो था, कि उसके बाद वालदैन को यकीन था कि अब हमारी तरबियत के बाद ये कोई बोंगी नहीं मारेंगे, ये जो कर रहे होंगे वो फर्म
बोंगी मारेंगे तो ऑन करेंगे,
ऑन करेंगे और वो उसके पीछे कोई फैक्चुअल रियलिटी होगी, कोई ऐसे नहीं होगा।
दुनिया में ना मेरे अब्बा जी का एक कॉल है, मुझे आई थिंक 9th grade 8th grade आई एंड आई एम गोना कोट हिम डायरेक्टली, ही सेड दुनिया में जो सबसे छोटा आदमी होता है ना वो झूठ के पीछे छुपता है। वो मतलब उसकी उसके छोटे होने की निशानी है कि वो झूठ के पीछे, क्योंकि झूठ इतनी छोटी और निचली चीज़ है कि अगर उसके पीछे छुप गए तो इतने छोटे थे कि तुम झूठ के पीछे भी
पीछे छुप सके,
झूठ ने तुम्हें छुपा दिया,
क्योंकि झूठ का अपना कोई लेवल नहीं है, तो तुम्हारा फिर क्या लेवल होगा जो उससे उसके पीछे तुम खड़े हो।
तो ये वरना कहते ना ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो वो असर नहीं करती, वो कितनी यहाँ पिट गया वो जुमला ही, मगर ये जुमला था उसके बाद तो ईगो ट्रिगर कर दिया था उन्होंने हमारा।
और ये वाकई ये जुमला है ऐसा, और जुमला ऐसे ही कोर्ट होना चाहिए हर जगह पे,
इतना छोटा है कि तू झूठ के पीछे छुप गया,
पीछे छुप
गया, तेरा इतना कद ही नहीं है कि तू बाहर नजर आ सके। तो उसके बाद फिर गलती भी की तो खुलेआम बताया कि हाँ मेरी गलती है। So this is the source of confidence.
लेकिन ये सारा वो टाइम था जब आप पाकिस्तान में नहीं थे, आपके
जी हाँ नहीं, मैं पाकिस्तान में भी, हमें अब्बा जी जब बेनजीर आई थी तो हम वापस आ गए थे,
वापस आ गए,
बेनजीर रोट लेटर्स, शी केम इन, एक फ्लाइट तो ऐसी थी जिसमें अब्बा जी को उन्हें जब बुलाया था तो वो वीआई इंग्लैंड थी, तो अब्बा जी बेनजीर एक ही जहाज में वापस आए,
वापस। अच्छा अच्छा
बट 6-8 months लेटर ही स्टार्टेड राइटिंग अगेंस्ट हर कि तू तो सही बुरी है, तो मतलब गलत तो है तो गलत है
सिस्टम।
तो बहरहाल तो वी न्यू व्हाट वाज गोइंग ऑन, ही वाज टेलिंग अस कि मसले आएंगे तो तैयार है ना। और मुझे याद है मेरे अब्बा जी ने हमें एक स्पीच दी थी कि तुम्हारा बाप गलत नहीं है, मुसीबत में है
मुश्किल में
मगर
है,
गलत नहीं है,
गलत नहीं है। अरे अल्लाह
तो क्योंकि उनको पता था कि यू नो क्लास में भी बातें होती होंगी, करते भी थे स्टूडेंट्स हमारे क्लास वाले, टीचर्स भी हमें रोज़ बताती रही थी कि ये चल रहा है चल रहा है, तो हम कभी कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ किया, हमने पता था कि बाप गलत नहीं है, हाँ मुसीबत में है गलत नहीं है। तो ये एक ऐसा मामला है जो मैं अपने बच्चों को भी वहीं से ना रेसिप्रोकेट करता हूँ कि बच्चों को साथ साथ ये कॉन्फिडेंस देते रहें कि किरदार का एहतसाब ज़रूरी है।
अरे अल्लाह हू अकबर,
बाप का सबसे पहले,
बाप का
सबसे पहले किरदार, मगर बग़ैर एहतसाब के शक ना किया करें किसी को, बिलीफ रखें, ठीक है। अगर आपने या तो एहतसाब करना है तो ठीक है करें, नहीं तो यकीन करें पूरा। तो हम तो छोटे थे तो हमें तो पता था कि अब जी उन्होंने कह दिया कि भाई बाप सही है, तो हमें तो वी आर नॉट क्वालिफाइड टू क्वालिफाई यू, सो वी हैड टू बिलीव यू, बट द फैक्ट दैट ही वाज टेलिंग अस दैट वाज यू नो पैरामाउंट, दैट वाज द कीस्टोन जो कि हमें अभी तक वो ड्राइव कर रहा है कि बेटा कैसे पालते हैं, बच्चा कैसे स्पेशल बेटियाँ कैसे पालते हैं। मेरी बेटी ने ना एक दफ़ा मेरी कोई वीडियो देखी और उसने मुझे कॉल की और शी से आपने ये बात कोट की है, तो ये तो मतलब कुरान के अगेंस्ट जा रही बात।
So how old she is?
She was 11 when she called me that.
अच्छा।
She was 14. मैं हमेशा मिक्स करता हूँ दोनों को ना, दो बेटियाँ मेरी बड़ी हैं, सबसे छोटी तो अभी 6 की हुई है। तो एंड आई डिड नॉट से कि यार तू मुझे बता रही है कि गलत है। यू नो व्हाट आई सेड वाज कि मैं इसका रुजू रिकॉर्ड करा दूंगा, फिक्र नहीं करो, जस्ट यू हैव टू प्रूव इट टू मी।
अगर गलत हुआ तो मैं इसको इसको करूंगा।
हां, मैंने ड्रैग की इस बात को ताकि उसको पता लगे कि शी हैज टू डू दिस। और फिर उसको मैंने कॉन्फिडेंस नहीं शैटर होने दिया, बिकॉज शी वाज रॉन्ग, बट आई डिड नॉट जस्ट शन इट कि नहीं ये तो ये किया, बाप से ऐसे बात करते हैं,
तुझे क्या पता,
तू बताएगी। सो शी बिल्ड इट अप फॉर एट लीस्ट अ कपल ऑफ मंथ्स, मे बी मोर, एंड देन वी बिल्ट दैट आर्ग्यूमेंट। आई मेड हर सिट अक्रॉस द टेबल के, अच्छा बताओ कहाँ गलत है, अच्छा इसकी इसका कहाँ से इस्तेदलाल कर रही हो ना, वेयर वेयर यू यू नो प्रेसिडेंस कहाँ से
तुम्हारे पास कमिंग फ्रॉम।
सो शी ओपन अ फ्यू बुक्स एंड शी सेड ये तो आपने जो है ना यू वेंट अगेंस्ट द बेसिक्स ऑफ दिस होल फिलासफी, एंड इवन दो शी वॉज रॉन्ग, बट आई केप्ट ऑन अप्रिशिएटिंग द फैक्ट के कोशिश तो करोड़ रुपये की है,
कोशिश तो है बाप को चैलेंज करना,
क्योंकि ये बुत ना बन जाए। हाँ, बाप अपना बुत बहुत जल्दी बनाता है, सबसे पहले अपना बुत तोड़ना पड़ता है।
ईगो का जो बुक है ना, बुत है वो बड़ा बड़ा हैवी है उसमें।
नहीं, अगर बाप को अगर आप चैलेंज कर दें और फतह कर लें, दुनिया फतह कर ली आपने, दुनिया आपने फतह कर ली हमसे ना, जिससे वही मैं कहता हूँ जिससे अपना घर नहीं फतह हो रहा वो मेरे पास ना आया करे सर, मैंने ग्लोबल मिशन का हिस्सा बनना है, पहले अपना बाप तो फतह करो। आई साहब ने मरियम की हदीस है ना, यू कैन नॉट बी अ ट्रू डिसाइपल ऑफ माइन लेस यू गो अगेंस्ट द रिलीजन ऑफ योर ओन फादर, कि तू अपने बाप के दीन से तो हट, बाद में मेरे दीन,
बाद में मेरे पे आ, पहले वो तो फैसला कर,
ये तो फैसला हो
नहीं रहना है कि नहीं रहना, पहले उसको तो चैलेंज कर, बाद में सोच आगे क्या करना है।
सो इट्स दैट सिंपल, हम आप मुफ्त नहीं,
बट इट्स नॉट दैट सिंपल, यू कैन से दैट इट्स दैट सिंपल,
इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट इजी, बट इट इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड,
इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एज़
वेल, इट इज सिंपल बट इट्स वेरी हार्ड,
इट्स वेरी हार्ड।
अपना ही बुत अपने ही बेटे के सामने तोड़े तो फिर तो मसला तो है, मसला तो है, करना तो पड़ेगा।
वाह, अच्छा उसके बाद कौन सा ऐसा चैप्टर आया, कौन सी ऐसी सिचुएशन आई कि आपने जो है, क्योंकि वो तो एक और तरह की सिचुएशन सारी चल रही थी, रिलीजन जो है वो कैसे इन्वॉल्व हुआ?
नहीं, वो मेरा बचपन से ही था, वी वर रिलीजियसली ट्यून्ड, इट वाज प्रीटी अर्ली ऑन, वालिद साहब भी फिलोसॉफिक, फलसफा तो घर पे ऐसे रिलीजियस फिलोसफी,
रिलीजियस फिलोसफी
जी जी, बस कहो सारे घरों में कौन सा घर सबसे आला है, जवाब आया कि अहले बैत का दर सबसे आला है। ये आई वाज व्हाट 12 जब ये पब्लिश हुई, इट वाज द मोस्ट वायरल थिंग, कहो इतनी सफ़ें एक समत, चंद अफराद एक जानिब, कहो इतनी सफ़ें एक समत, चंद अफराद एक जानिब, कहा तादाद में जो कम है लश्कर सबसे आला है, कहा सजदे में एक सर एक तरफ, एक समत एक लश्कर, कहा सजदे में एक सर एक तरफ, एक समत एक लश्कर, कहा इस जंग का ये ही तो मंजर सबसे आला है।
अरे अल्लाह अल्लाह,
तो इस तरह की गजल आप पढ़े आप जब 12 साल के हो
तो फिर क्या
तो आप क्या सोचेंगे
इनका, वाह वाह,
तो आप तो कहानी किसी और लेवल पे। माय फादर वाज यू नो माउंटेन ऑफ फिलॉसफी, एक मैंने आपसे कहा ना ये जो नीचे और ह्यूम और डेकार्टे की किताबें थी और पार्क टी हाउस की गजलें थी,
गजलें थी, हाँ हाँ,
ये लोग फलसफा ऐसे तरतीब सोच ऐसे बना रहे थे,
तो ये ओढ़ना भी छोड़ना था आपका भी, वालिद साहब को तो था ही, उनका तो
नहीं, वो तो ही ग्रो अप,
लेकिन आपका भी, आपके इर्द गिर्द ये किताबें इन्हीं पे सर रख के आप सोते थे और ये सारा इर्द गिर्द आपकी चीज़ें।
जी हाँ, इस लेवल में मुझे याद है कि क्योंकि शायद जब भी ना उस वक्त, अब तो मुझे नहीं पता, उस वक्त जब कोई किताब छापता था ना तो असातिज़ा को एक एक मुसव्वदा आता था, फर्स्ट कॉपी
कॉपी आती थी, बिल्कुल अभी भी।
तो हमारे घर तो मतलब 10-12 हज़ार किताबें थी, तो हर वक्त ना कोई एक किताब जो नया शायर आता था, या पुराने भी होंगे, तो वी कुड ईजीली टेल के अभी शायरी जो है ना किसकी अभी पकी नहीं है, किसकी पक गई है, तो वी हैड दैट पिक।
आप अभी, और वो आपके वालिद साहब के लिए आती थी
कि जी, हाँ हाँ, वो तो घर पर आती थी ना, बच्चे के आप रिव्यू कर लें, या फिर गिफ्ट आता था कि हमने छापी है तो एक साइन कर दें,
तो वो आप पढ़ के आप वो देख रहे होते थे कि यार ये ठीक
है। अभी मेरे ब्रदर्स जैसे वो कोई नेटफ्लिक्स की सीजन आए तो घर में होता ना वो वाला फिल्म देखी है, वो वाला सीजन, हमारे यहाँ तो किताब
किताब आई है
डिनर टेबल तक पहुँच गई है, वो बंदा जो है ना काम का शायर है।
काम का शायर
तो ये यू नो 14-15 साल के लड़के इस तरह ट्रेन हो रहे थे हम तीनों भाई के। तो फिर इसलिए ना मैं शकीब जलाली नेवर लेफ्ट दैट डिनर टेबल दैट दैट वाज ही इज द गाय
द अल्टीमेट।
मतलब हम ना अब्बा जी के सामने तो नहीं करते थे मगर अकेले में हम करते थे कि यार ये वाली गजल अब्बा की गजल से बेहतर है या इधर से इंस्पिरेशन ले रहे हैं आदमी
साहब। ये भी चल रहा
था
मतलब इस लेवल पे आप भी पहुंच चुके हुए थे कि अब आप जो है वो कंपैरिजंस करते थे कि यार
नहीं नहीं हम तो करते रोज का काम था हमारे
घर का काम घर का।
सेकंडली ना जैसे वो ब्रैड पिट टॉम क्रूज एक होता ना कि अच्छा ये इसका फेवरेट हीरो तो हमारे यहाँ ये मामला था कि अच्छा शकीब शकीब नेवर लेफ्ट द टॉप top pedestal in all of my my siblings and it was so deep of an effect ye shikayat ka mere upar hai and I'm pretty sure mere bhaiyon pe bhi hai ke main it is beyond explanation ke main matlab main sochta bhi us pe raaye mein hu matlab jin galiyon se wo guzar gaya na mujhe main abhi tak unse azad nahi ho saka it is matlab main beta adim hashmi ka hu मगर असर मेरे पे शकीब जलाली का ज़्यादा जी।
अच्छा वो कौन सा एक आपने जब हम आप निजी महफिल में बैठे हुए थे तो आपने डिस्कस किया था इफ यू फील लाइक शेयरिंग इट विद द पब्लिक एज वेल कि वो एक टाइम जब आप एक स्कूल में एक आर्गुमेंट हो रहा था और बाइबल का और
वो तो अमेरिका की बात है ना।
वो तो हम क्या व्हाट वाज इट ऑल अबाउट
वो बाइबल स्टडी है बाइबल स्टडी में मैं स्टेज पे था आई वाज प्रेजेंटिंग द सर्टेन पार्ट ऑफ द बाइबल एक्चुअली
क्रिंथियंस
2 के ऊपर। हाँ नहीं नहीं पढ़नी डिबेट होती है ना।
अच्छा नहीं आप like, स्कूल में पढ़ रहे थे।
जी जी हाँ मैं स्टूडेंट हूँ क्लास में तो वो असल में ना इट्स मोर ऑफ अ लर्निंग कर्व जिसे वो गुजारते हैं कि जो मेजर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे थे उसके खिलाफ वो ना एक सिमुलेशन करवाते हैं।
बिल्कुल सही।
तो वो सिमुलेशन इस तरह नहीं होते कि दोनों आर्ग्यूमेंट्स मिल जाएंगे मुझे मतलब आपका मुझे मिल जाएगा। इट इज़ यू प्रिपेयर से आपकी टीम ही हो रहा है मेरी टीम ही हो रहा है।
अच्छा
तो हमें अलग से प्रेपरेशन होती है कि ये काउंटर करेगा या
और
ये
फिर उस पे फिर आर्गुमेंट होती है।
सो अब्बा जी को क्या पता कि ये क्या कोर्स चल रहा है क्या नहीं।
बाइबल तो, का कोर्स चल रहा है
नहीं कॉन्वेंट स्कूल था तो पता इतना तो था मगर ये नहीं पता था कि
इस हद तक
या तो व्हेन ही केम इन इट वाज लाइक मोर ऑफ अ जैसे वो ड्रामा या प्ले नहीं होता होता था इस तरह मैं तो इस टीम में था मैं
हो रहा है कुछ
या वो ये समझ के आए होंगे। तो वो मैं गया मैं बड़ा खुश किया अब्बा जी आए मैं तो 15-20 मिनट का डायलॉग था मतलब इट वाज लाइक गॉन मतलब 3 मिनट उसको मिलते हैं 3 मिनट मुझे मिलते हैं और ये चीज़ तीन तीन दफ़ा की जाती है उसके बाद समेशन क्लोजिंग करनी पड़ती है जस्ट लाइक लॉयर्स। सो उसके बाद फिर पॉइंट्स आते हैं टीम्स पॉइंट करती है तो अभी मैं जीता ही था अभी मतलब अभी हमें पता था मैंने टीम जिता दी है।
अच्छा बड़े फ़खर से आप
इवेंट अब्बा जी सारे तालियाँ बजा रहे मैं भाग के भाग गया हूँ कि तेज से चलता भाग किया अब्बा जी ने अभी शायद गले लगा था अब्बा जी ने ही वाज इन अ शॉक यू नो
कि ये क्या
कि मैं क्या मेहनतें करता हूँ पूरी उधर कौम सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ तू इधर बैठा
यहाँ पे ये क्या कर रहा है मुल्क से निकल के बागी हो के निकाला
नहीं छोड़ दिए
निकाला गया हूँ तू बाइबल पे लगा
बिल्कुल। तो उधर उन्होंने फिर सबके सामने एक लगा दी मुझे
और था
या बट ही वाज इट वाज अ रिफ्लेक्स ओके बिकॉज़ ही अपोलोजाइज्ड मी
लेकिन उस वक्त एक वो एक
ही वाज इन अ शॉक आया है वो आए हैं बेटा सामने बाइबल प्रेजेंट करके नीचे आया जी सब कुछ शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स सॉरी गुड कॉल में जब मेरे पापा जी उर्दू में बात करते थे ना हमसे तो उसको मतलब شدید गुस्से में
अच्छा उसको गुस्से में
तो लाउड थी ना पंजाबी का मतलब है कि प्यार पंजाबी में ही होगा।
अच्छा
तो वो फिर मैंने कहा कि ये हुआ क्या है आई डिंट नो कि क्या हुआ ये 4-8 दिन बाद पता चला मुझे वो भी बड़े भाई थे कि हुआ क्या था सो इज दैट ऑफ
उसके बाद
उन्होंने फिर फिल फॉर मुझे याद है उन्होंने एक उर्दन के एक मुफ्ती साहब थे उसके पास जैसे वो बच्चे को कोई बीमारी पकड़ी गई होते डॉक्टर के पास
लेकिन स्पेशल
डॉक्टर वो बिल्कुल ऐसे ही हुआ। मैं मुझे याद है वो मीटिंग थी वो खुसर पुसर चल रही थी दो बुजुर्गान की मैं बैठा हुआ था अकेला किसी सोफे पे और फिर घंटे डेढ़ बाद उन्होंने मुझे बताया कि यू विल हैव टू कम हियर एवरी डे एंड आई सेड श्योर क्यों नहीं बाद में पता चला ये मेरी वो है मतलब रिहैबिलिटेशन सेंटर है
ओए 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 ओए
कि आप ना बहुत ज़्यादा ही आप बाइबल बाइबल खेल रहे हैं, कुरान में आने दे
तो आपको वो ट्रांसफॉर्म करना वापस से
या
वापस से
या
करनी है
अल्हम्दुलिल्लाह या इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी आई वेंट ऑन द मोस्ट ब्यूटीफुल जर्नी ऑन माय लाइफ या या बिकॉज स्कूल में तो मुझे वो सिखाया जा रहा था, क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जा रही थी. इधर उन्होंने मुझे ऐसे ही सिखाया था कि पहले तो तुम्हें बताया ना कि इस्लाम को देखना कैसे, फिर तब पता चलेगा दुनिया को कैसे देखना. सो आई लर्न द पर्पज़ ऑफ इस्लाम टू दैट मैन. अल्लाह भी प्लीज़ थे बहुत ही मेरा मेरी ज़िंदगी उस बंदे के हाथ में, जो कुछ मैं अच्छा करता हूँ उसके तवस्त से हो, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर दे. और ही ओपन अप एवरीथिंग एंड देन ही शिफ्टेड मी टू अनदर गाय एंड दैट गाय अनदर गाय. वो क्योंकि हर कैटेगरी का अलग टीचर एक्सपर्ट होता है. इट वॉज अ वेरी लॉन्ग जर्नी आफ्टर दैट. इवन आफ्टर माई फादर्स डेथ आई नेवर लेट गो ऑफ दोज पीपल. अभी भी मैं उन्हीं का मरहून मिन्नत हूँ, जो कुछ भी अच्छा यहाँ से भी मतलब दे रियली टॉट मी विद ऑल द हार्ट. एंड आई वॉज 11 स्टूडेंट्स का एक दूसरा क्रिएट करते हैं, ग्रुप होता है, उसके बाद एक उनमें से पिक होता है कि अगला वो क्रिएट करे. सो आई वॉज पिक्ड आउट एवरी सिंगल टाइम और ऑल दीज टीचर्स. बड़ा मतलब ये नहीं कि मेरी को महारत थी, मुझे पता था ये प्यार कर रहे हैं बहुत ज़्यादा.
प्यार कर रहे हैं,
दिस इज जस्ट लव, दिस इज जस्ट लव. यहाँ तक कि आपको अगर उस्ताद क्लास के बाद याद आए तो वो ऐसा उस्ताद की निशानी होती है. असली उस्ताद होता है कि क्लास छोड़ने के बाद आपको याद आए कि मैं वापस जाऊँ,
और कई साल के बाद याद आए.
नहीं नहीं मैं आपको बता सकता हूँ, मैं छोड़ता था और भरे ढूंढता था कि वापस जाऊँ. अभी ये तो बिल्डिंग में मौजूद है ना.
वाह वाह,
ये ऐसे ऐसे असातिज़ा गुजरे मेरे कि जिनको जिनके देख के आपकी आंखें चमकती हैं, क्योंकि आपको देख के उनकी आंखें चमक रही होती
हैं. तो अभी उसके बाद फिर जब आप पाकिस्तान में आए तो यहाँ पे आके वो एक स्टोरी है जब आप बिल्कुल अच्छे भले जा कहीं और रहे थे, फिर आप यू प्लान किया मैं वापस पाकिस्तान जाऊँ, ये चीज़ें शुरू करूँ. यहाँ पे आपको कौन सी कमियाँ, बहुत सारी लेकिन कौन सी कमियाँ जो मेजर पॉइंट्स हैं, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं, वो कौन कौन से मिसिंग लिंक्स हैं जो हमारे? अभी तो एक ही वाक्य आपने देखा है कि इचराक में जो कल परसों एक थोड़ी देर पहले वाक्य हुआ है उसमें, हाँ, तो वो एक बच्ची ने जो है वो कोई उसमें कुछ फाजी हुई हुई थी किताब उसके अरबी की, और वो उसकी वजह से कोई जेर जबर लगा हुआ था, तो उन्होंने समझा कि कुरानी आयात. ये इतना ऑड माइंड सेट, हम लोग इसको कैसे ठीक कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे भी कि नहीं, या नहीं है तो कहाँ से गलती हुई है?
मसले की तह जो है ना,
हाँ,
वो नफ्सियाती है.
नफ्सियाती
जी जी, क्योंकि दो चीज़ें, अगर तो ये लड़का होता, आदमी होता और उसने ऐसा कुछ पहना होता तो मामला किसी और नौीयत का होना था, हम सबको पता.
हाँ
ठीक है, शायद तो होता भी ना मसला ये. ओके, और अगर हो जाता तो फिर किसी और ही एक्सट्रीम पे चली जाती बात. दूसरा, किसी भी जगह पर भी लिखी हुई हो, ठीक है, और यही ना पता हो कि उसका मतलब क्या है,
मतलब क्या है,
तो वो जहालत के देखिए मलिशिया जो होती है ना, जो मॉब क्रिएट होती है, वो किसी सोच की बिना पे नहीं होती. वो मतलब होती तो सोच ही है, मगर वो ये नहीं देख रहे होते कि क्या हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. वो ये देख रहे हैं कि बाकी लोग भी कर रहे हैं तो मैंने भी करना,
मैंने भी करना.
सो इट इज़ दैट सॉर्ट ऑफ अ रिपल स्नोबॉल बन जाता है, और एकदम बात कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है. तो वो खातून को मार तो नहीं दिएगा ना?
नहीं नहीं,
तो आई वुडंट हैव बीन सरप्राइज्ड कि अगर इस मौके पे कोई बंदा मारी
जाए, इतने एक्सट्रीम पे भी चले जाते तो आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं.
नहीं, मलेशिया काम ही ऐसे करती है, चाहे वो गैर मुस्लिमों की हो चाहे किसी भी वजह से हो. जब मलेशिया बनती है तो लोग इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो सही समझ रहे होते हैं उसको, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि अब ये करना है.
हाँ, बल्कि वो हुआ भी ऐसे कि एक वो पुलिस ऑफिसर थी, वो वहाँ पर गई और वहाँ जाके उन्होंने उस बच्ची को वहाँ से, उस मॉब के अंदर से बड़ा सेफली निकाला. वो भी बड़ी बात थी उस बच्चे की भी, वो जो पुलिस ऑफिसर थी उसने उसको वहाँ से, शहरबान उसका नाम है, उसको वहाँ से लेके गई, उसके बाद पुलिस स्टेशन ले गई, बयान रिकॉर्ड कराया, वीडियो बनाई कि यार ये हमें नहीं पता था क्या लिखा हुआ है, और वो लिखा भी कोई हलवा हुआ था जिसका मतलब खूबसूरती है या खूबसूरत है, तो वो कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई थी. मैं ये कह रहा हूँ जिस पे जेर जबर पेश लगा वो कुरानी आयात नहीं है भाई, वो तो आम जारी बात है, एक अरबी है, तो अरबी में तो बहुत सारी चीज़ें जो
है, गालियां भी अरबी में होती
घर में, सारा कुछ उसमें, और बहुत सारा कुछ जो है वो उसमें. हम जाते हैं सऊदीया या दुबई जाए तो वहाँ पर आपने साइन बोर्ड्स हैं, वो बाथरूमों के अंदर चीज़ें, वो सारा कुछ भाई, वो सब अरबी, जैसे उर्दू लिखी होती है वैसे अरबी लिखी होती है. इसका ये मतलब नहीं कि कुरानी आयात है, लेकिन ये वो आपका जो मेन पॉइंट है कि अरबी सीखना बहुत ज़रूरी है.
अगर अरबी ठीक ही होती तो ये सोच भी ना बनी होती,
ये माइंडसेट ना
होता इस तरीके के. हाँ, कुरान पाक को फिर आप एक्टिविटी की किताब देखते ज़्यादा देन बरकत की किताब ना.
हाँ
अगर अरबी आती होती हमें तो।
हाँ
सो ये एक मसला तो है। सेकेंडली, जिस भी भाई साहब ने पहली दफ़ा ये सोच के एतराज़ किया है ना, वो जिस बंदे से एतराज़ किया है वो उससे भी बड़ा जाहिल था ना, कि हाँ ये तो बेअदबी हो गई।
बेअदबी हो
सो ये सोच इस लेवल के ऊपर मतलब क्रिएट ही नहीं की गई। और इट्स अ प्रॉब्लम इफ़ यू नो इफ़ वी डोंट कॉल इट रॉन्ग, और इसमें से भी कोई पॉजिटिव निकाल रहा हो कोई बंदा बैठ के, कि अच्छा यार किसी ने कुरान की तो हिफाजत का ज़िम्मा लिया ही ना किसी ने, तो मतलब सोचें कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा अरबी सीखना है।
अरबी सीखना है, ज़िम्मा
कुरान
ये
प्रोटेक्ट
है।
ऐसे किया जाएगा नाउज़ बिल्लाह? कुरान आपकी डंडों और सोटियों का मोहताज है, हमारे जज्बों का मोहताज है कुरान? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने कहा मैं हिफाजत करूँगा, ये वो बैठे हैं जो अल्लाह की हिफाजत करने वाली, ये भी सोच है ठीक है, अल्लाह ने कहा मैं हिफाजत करूँगा, ये बैठे हुए कि ये बचा लेंगे अपनी जहालत से, हम कुरान बचाएंगे। तो अगर कुरान के साथ कुछ करना है तो उसके ऊपर अमल करना है, और वो तभी होगा जब अरबी आएगी। तो और मैं पिछले 5 साल से कह रहा हूँ, मिन्नतें कर रहा हूँ कि अरबी सीख लो, कहीं भी जाके किसी भी अरब से अरबी सीख लो, बेशक भीख मांग के अरबी सीखनी पड़े, किसी अरबी सीख लें आप, कि हमारे बच्चों को ये वाले काम ना करने पड़े। कि जो मतलब मैं ऐसे ऐसी मजालिस देखी हैं मैंने कि वो बंदा कुछ भी बोल देगा इसको वो रसूल के बाद का दर्जा दे देंगे, क्योंकि उसने कोई एक ऐसी आयत सुना दी है लोगों, क्योंकि इतने जाहिल हैं कि उसको यही नहीं पता, हालांकि वो आयत रेलेवेंट भी नहीं थी उस जगह पे सुनाने के लिए इस लेवल, क्योंकि हम पे सिर्फ बरकत का, और मतलब हमने गीता के नहज के ऊपर कुरान इंस्टॉल किया अपने अंदर। ये है हमारी कौम का मसला, कि नहज गीता का, इम्तिदाज भी गीता का, और किताब अल्लाह की, कुरान हमने वक्त उसकी जगह प्लस कर लिया। सो जब इस तरह की सुपरस्टिशियस किस्म की बिलीव सिस्टम के अंदर इस तरह का मामला आएगा तो फिर वही होगा। बाय द वे, ये 3,000 साल पहले या 2,000 साल पहले यही वाक़या इसी इछरा में हुआ हुआ है, पहले भी इछरा की इसी गली में ये वाक़या। उस वक्त तो एक औरत संस्कृत में एक कपड़े पहन के आ गई थी, समझ रहे,
संस्कृत में। अच्छा ठीक हो गया।
तो वो उन्होंने कहा ये गीता की बेदबी उन्होंने मारा था, वो यहाँ के हालांकि खस्त्री थे, वो थे ब्राह्मण भी नहीं थे, क्योंकि प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं, समझ रहे। ये एग्जैक्ट ये वाक़या 2,000 साल पहले इसी इसराइल गली में हुआ, उस वक्त पुलिस नहीं आई थी, वो बंदा उन्होंने मार दिया था,
मार दिया था।
ये 4,000 साल से ये कौम यही करते
रही, यही करती जा रही है,
बस हमने उसका कुरान रिप्लेस कर दिया। नहीं तो ये कहीं से भी ऐसा मामला नहीं है कि जिसमें जिसने मैंने आपसे कहा जिसने सीरा नहीं पढ़ी उसके साथ ये वाक़या होना ज़रूरी है। सीरत नबी पढ़ें, आपको पता चले नबी इस्लाम का मुआशरा कैसा था, किन बातों को क्रिटिकल कहते थे, किन बातों को कभी भी क्रिटिकल नहीं, और बहुत कैजुअल करते थे। सो हमने बस अपनी तरफ से वही ना बस। और बाद दबे जब सहाबा इस्लाम सिखा रहे थे इस वक्त यहाँ पे, उस टाइम पे यहाँ पे यही काम गीता के नाम पे किए जा रहे थे जो भी किए जा रहे, बस इतनी सी बात है। दैट्स जो आप कहते हैं ना यहाँ पे क्या तंगी, ये यहाँ पे ये तंगी है कि गीता सांस नहीं लेने देती, ठीक है, ये कुरान है जो रोशनदान खोलता है आपकी सोच के दिमाग। तो गीता ने तो नहीं, क्योंकि 4,000 साल से अभी तक उधर नहीं सांस आए, जाके देख लें दलित की हालात क्या है, गीता नहीं हवा नहीं देती भाई। इट इज़ ओनली फॉर सर्टन चोजन वन हु आर बोर्न इन साइड द सर्कल ऑफ हु एवर इज़ गोइंग टू कंट्रोल वट एवर इज़ गोइंग टू हैपन टू एवरीबडी एल्स। कुरान इज़ लाइक नहीं भाई, असूल सिर्फ अल्लाह के सामने जो भी खड़ा हो वो अल्लाह का गुलाम है, बस एक जितना ही गुलाम है। दिस इज़ वट वी आर, बस इतने बड़े कैनवस पर भी नहीं हम आ सक रहे, तो फिर हम अपने खुद हम देखें। मेरा ये बिलीफ है जो इस्लाम पर नहीं ना आना चाहता वो जान के नहीं आना चाहता,
जान के नहीं आना चाहता,
उसको उसके अंदर कजी है, जो इस्लाम पे नहीं है उसके अंदर कजी है। ये हो ही नहीं सकता, इतनी ओपन बाउंड्री, इतना मतलब इट्स अ लाइफस्टाइल विच हैज़ पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम, इंटेलेक्चुअलिज्म। जो ये नहीं आना चाह रहा वो खुद किसी बीमारी की वजह से नहीं आ रहा, कि मुझे कुछ और चाहिए,
कुछ और चाहिए,
वरना इस्लाम जैसी चीज़ आप कन्फ्यूज नहीं हो सकते। इतनी ओपन इन्विटेशन में इतनी ज़्यादा वसत किसी एक इल्म भी मामलात की, अदालत की, फहम की, कायनात की, इतना कुछ, सॉरी ये अगर आप इस्लाम पे नहीं आए तो ये ना कि आपको पता नहीं चला, नहीं, आप जान के हिंदू रहे हैं, आप जान के गैर मुस्लिम रहे, जान के आप छोटे रहे हैं, ये जानते बूझते आपने, क्योंकि आप कुछ इससे भी छोटा मकसद अचीव करना चाहते थे अपने 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 लिए, अपने बच्चों के लिए।
आपको कहने का मकसद है कि अगर आप नहीं इस्लाम पे आ रहे तो आपको शायद नहीं आने दिया या लाने नहीं दिया जा रहा,
नहीं, कोई भी नहीं फोर्स करता,
कोई
ये हो
फोर्स
नहीं
नहीं करता,
सकता
कोई रोक भी नहीं सकता।
जी। मेरे सामने मुफ्त में हार्वर्ड की डिग्री हो और अपने बच्चे के लिए टिकट की ऑप्शन हो और मैं जान ना वो ना जा रहा हूँ, तो मैं जान के नहीं, मैं कहीं और भेजना चाह रहा हूँ उसको,
भेजना चाह रहा हूँ।
अपना कोई छोटा शौक पूरा करना चाह रहा हूँ। ये हो नहीं सकता कि आपको नबी सलाम की सीरा या कुरान पाक के बारे में 1% भी इल्म हो जाए और आप अपनी पूरी फैमिली ना उधर डेडिकेट कर दें, ये हो ही नहीं सकता। ये इज़ समथिंग एल्स, यू सफरिंग सम अदर डिजीज़, कोई और बीमारी है आपको जो आप इस्लाम पे नहीं जा रहे, उस बीमारी की शनाख्त करें, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि और किसी ने गलत प्रेजेंट कर दिया तो मौलवी साहब ये तो नो वो सब कुछ ठीक है, मुझे ये पता है मौलवी की परफॉर्मेंस ज़ीरो है, मगर अल्लाह ने आपको अगर 1% भी ग्लिमर भी दिखा दिया ना इस्लाम का, तो आप लपक के जाते उस तरफ।
ये इशू सब कॉन्टिनेंट का है क्योंकि आप पूरी दुनिया ट्रेवल
दुनिया
करते हैं
पूरी
इस
सर
हवाले
पूरी
से, पूरी
दुनिया में,
दुनिया में
और
आएंगे
बाहर
मुश्किल।
तो मुझे पता है किस बीमारी से वो कुरान पे नहीं आते ना, वो तो मुझे पता है
वो कोई और इशू है।
जी। देखें वो तो नफ्सियात है कि आसान से आकर के नफ्सियात बताता हूँ, फातह जो भी होते हैं ना फातह, वो मफतू के हर चीज़ को निचला समझते हैं, याद रखिएगा ये असूल याद रखिएगा, फातह कौम मफतू कौम के सबसे पहले इंटेलेक्ट को निचला समझते हैं,
निचला समझते हैं।
कम समझते हैं, कमज़ोर समझते हैं, हालांकि टैंक लेके आए होते हैं, कोई और बारूद इस्तेमाल किया होता है, फ़लसफ़ा नहीं इस्तेमाल किया
नहीं
होता,
किया
मगर
होता
उनका सबसे पहले फ़लसफ़ा कुर्बान होगा। जैसे वो जानवरों की लड़ाई होती है ना, तो जो जानवर हारता है ना तो अपने आप को कुर्बान करता है,
कुर्बान भी। हाँ
बिल्कुल इंसानों की लड़ाई होती है ना, तो जो इंसान हारता है सबसे पहले अपने फ़लसफ़े की गर्दन काटता है सबके सामने, कि अगर मेरे फ़लसफ़े में और मेरे दीन में इतनी जान होती तो मैं ताबे ना आता किसी के, ये है नफ्सियात, समझ लें एक दफ़ा। और मैं नफ्सियात अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये कुरान पाक की आयत सुनाई है मैंने आपको, कि या अल्लाह हमें इनको हमारी नाहली की वजह से किसी इम्तहान में ना डाली। ये किसके बारे में बात हो, ये
अल्लाह
उन फाते लोगों के बारे में कि ये तो कभी दीन पे आएंगे नहीं, क्योंकि हम इनके मफ्तू हो गए, तो इन्होंने समझना इनका दीन ही नकारा था। ये नफ्सियात की आयत है मैं बता रहा हूँ आपको, कि फातह कौम मफतू कौम के सबसे पहले दीन को 2 नंबर समझते
दो
हैं,
नंबर समझती है।
वो क्यों आएंगे इस्लाम पे, हमारी नाअहली की वजह से अब वो गैर मुस्लिम अरीना भी इस्लाम पे नहीं आ सकता, और यही वजह है वो नहीं आ रहे। बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा मुफक्कर उठाएं गैर मुस्लिमों का और उसको दावत ने कुरान की, वो पता कहेगा कि यार तुम 2 अरब लोगों को नहीं उठा सकी ये किताब, मुझे क्यों उठाएगी। और ये क्या, मैंने कोई नया जुमला नहीं बोला, वो बोल रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ, मैं तो होता हूँ उन मुल्कों में ना, कि तुम 2 अरब में से कोई एक बंदा नहीं निकाल सक रही, मुझे भी लेके आ गए हो, देखो मेरे पीछे साइंस की और तरक्की की और टेक्नोलॉजी की और फतह की लाइन लगी हुई है, तुम उठा के आए हो, कुएं के गटर में रह रहे हो और आगे कहते हो हमारे पास सबसे बड़ी किताब है, ये हमने किया है, ये है वो आयत का मतलब। ये तो वेस्टर्न मुल्कों में तो ये है मसला कि वो मजबूरन नहीं आ सकते दीन पे, वो हमने किया है,
हाँ सही
उनको फितने में हमने डाला हुआ है,
डाला होगा।
ये बराक ओबामा या विक्टोरिया ने नहीं डाला, हमने अपनी नाहली से उनको फितने में डाला है, ये है कॉन्सेप्ट इस्लाम का। और मैं कोई वलीउल्लाह तो नहीं हूँ, औलिया यही बात करते थे कि हमारी वजह से बड़ी कौमें हमारी वजह से गारत हुई, उनका ये मतलब था, ये कुरान भी बता रहा था कि ये बड़ी कौमें, हाँ जी ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन बड़ी कौम हमारी वजह से गारत हो गई, वो कभी भी दीन पर नहीं आएंगे,
And
ठीक है।
what do you think about this part of
एंड
the
यू थिंक
world?
हमसे सवाल नहीं होगा, होगा हमसे सवाल,
होगा। And this part of the world?
ये वो बीमारी मैं कह रहा था, ये जान के नहीं आ
यहाँ
रहे
वाले जान
जी,
के नहीं
ये
आ
तो
रहे।
जानते बूझते नहीं आ रहे, इनके अंदर कोई छोटी बीमारी है, कोई गंदी और छोटी बीमारी है,
वो बड़ी बीमारी है। वो तो
वो
एक बड़ा
नफ्सियात
एक
है,
वो तो
वो
एक वो
नफ्सियात
तो
है,
एक
हाँ वो
साइकोलॉजी
तो
वो तो एक वो एक
इट्स
सिचुएशन
वेरी
डिफरेंट है।
नेचुरल,
हाँ वो
हाँ
सिचुएशन डिफरेंट है। जो
पुट
जीते
सोचो
हुए हैं वो तो जीते हुए
जी
हैं ना भाई,
जी
वो तो
बिल्कुल
फिर उसमें
बिल्कुल।
कोई
अब
कम।
पाकिस्तान में समझ लें कोई पारसी कौम रहती हो तो हम उनको देख के कभी पारसी नहीं होंगे, क्योंकि हम
हाँ
डोमिनेंट रिलीजन, यहाँ जो डोमिनेंट होता है ना वो
हाँ
कभी अपनी अपनी सबसर्वियंट की तरफ नहीं मूव
नहीं
करता,
मूव करेगा उसमें।
कोई
हाँ
चक्कर ही नहीं है। सो इट्स इट्स दैट
अनलेस इट इज प्रूवन कि ये डोमिनेंट रिलीजन है।
जी, जो मतलब उसको बहुत बड़ा मतलब हर एक बंदा अमेरिकन क्यों ना चाह रहा, अमेरिका ने डोमिनेट कर दिया हुआ
कर दिया वो।
कि वी थिंक इट्स एवरीथिंग अबाउट इट इज़ राइट, इवन
हाँ
दो नो नो मोस्ट ऑफ इट इज़ नॉट राइट, बट हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं
एक
है।
साइकोलॉजी ऐसी बना दी है उसमें, एक फिलॉसफी ऐसी बन चुकी हुई है कि वो लगता है कि वही सारे ठीक हैं उसमें। और यहाँ का मसला है कि हम लोग चाहते नहीं है ठीक होना, और हम लोगों के और मसाइल चल रहे हैं। कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम आरिफ टीवी ने नशर किया, आपकी बहुत मेहरबानी थी, आपने बड़े अच्छे तरीके से उसको एक्सप्लेन किया, वो इब्तदा इंतहा था, और हमने जो है वो जिक्र किया सूरह कहफ़ के हवाले से, और हम जा रहे थे कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, कौन से एलिमेंट्स हैं, दुनिया के ख़त्म होने तक कौन कौन सी चीज़ें किस किस तरह से वक़ूअ पज़ीर हुई। अभी तक हम जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाए, और बहुत से लोग उस पर शोर मचा रहे हैं कि भाई आगे करें, उसको कंप्लीट करें। एक तो आप लोगों को बता दें कि नहीं जी इंशाल्लाह रमज़ान में, इस रमज़ान से
इंशाल्लाह
उसके बाकी चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे क्यों दज्जाल की इतनी एक्साइटमेंट क्यों है, लोग इतना क्यों दज्जाल के बारे में सुनना चाहते हैं और पता करना चाहते हैं, क्या ऐसा?
इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इट्स नॉट जस्ट अस, इवन क्रिश्चियंस आर टॉकिंग अबाउट इट। एंटी क्राइस्ट इज अ वेरी एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट,
एंड एट दिस मोमेंट के शुरू से ही चला आ रहा है।
ये वाहिद सुपर हीरो है ना,
वाहिद सुपर हीरो,
थियोलॉजी का सुपर हीरो तो दज्जाल है ना, जो मुर्दे जिंदा करता है और बारिशें कराता है, और ही इज गॉट ऑल इन वन
सुपर नॉर्मल।
या इट्स इज अ सुपर हीरो ना, मतलब है तो विलन ही मगर उसके पास सुपर पावर है, तो सुपर पावर रिकग्नाइज की जा रही ना। कुछ सोचें कि इस सच अ मार्वलस थिंग कि बड़ी बड़ी कौमें नबियों के मौजदे देख के मुसलमान हो गई थी, ठीक है, तो मौजदा को छोड़ इट्स अ बिग बिग इवेंट। तो हम दज्जाल के मसल दज्जाल के पास जो ताकतें हैं ना वो फैसिनेट करती हैं, तो वो टॉपिक फैशन बन जाता है।
और अभी भी ये जिक्र जो हो रहा है ये इसलिए है कि वो शायद वक्त करीब आ रहा है, हम लोग उस वक्त बड़ी तेज़ से हम उसकी तरफ जा रहे हैं। डू यू थिंक लाइक
वो वक्त तो तब होगा, उसकी निशानी उस वक्त की क्या है ये भी देखें, इस्लाम की खूबसूरती, उस वक्त की निशानी ये है कि दज्जाल को लोग भूल चुके होंगे।
अरे
अगर दज्जाल का जिक्र है और सबको पता दज्जाल नहीं आ रहा,
फिर नहीं आ रहा।
दज्जाल की पहली निशानी ये है उस वक्त की कि दज्जाल का जिक्र कब का ख़त्म हो चुका है, लोग भूल चुके हैं कि दज्जाल भी कोई चीज़ थी, अचानक उसका ज़हूर होना है। तो ये जो बैठे हुए ना कि ओ ये दज्जाल है वो दज्जाल, तुम लोगों ने ही तो उसको मतलब अच्छी बात है जिक्र कर रहे हैं हम, मगर खुद ही पता है, एक इस्लाम के स्कॉलर भी हैं, ऊपर से वही हदीस के उलट भी चल रहे हैं कि आप उसका जिक्र करते करते तो नहीं उसको लेके आ सकते, जाने देंगे। ही हैज़ टू कम एंड नो वन रिमेंबर्स हिम।
कम अज़ कम ये हालात, ये दिन तो आजकल तो जो आप जो देखते हैं, सारे सोशल मीडिया देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं, तो हर चीज़ जगह पे दज्जाल के
नहीं 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 ज़्यादातर सोशल मीडिया पे तो नहीं है ना,
सारा चल रहा है,
वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट 1% ऑफ
द होल वर्ल्ड।
खुद सोचे ना 1% भी नहीं है, यूट्यूब की ओवरऑल, टेलीविजन की ओवरऑल माइलेज का 1% भी दज्जाल का कॉन्सेप्ट नहीं है,
कॉन्सेप्ट नहीं है।
ज़्यादातर तो डांस ड्रामा मस्ती चलती है ना, दज्जाल का इट्स लाइक इट्स नॉट अ It's not that common, but I'm still it's there. और वो भी लिबरल घरानों में नहीं, दज्जाल गायब हो चुका, वो तो कभी आया ही नहीं था
वहाँ पर।
दीनी सेक्टर से दज्जाल का कॉन्सेप्ट उड़ दिया जाए, क्योंकि नबी साहब ने कहा जुम्मे के खुतबे में दज्जाल की का तज़किरा बंद हो चुका होगा, नो वन विल रिमेंबर हिम। तो जुम्मे के खुतबे का मतलब है कि दीन के सेक्टर के अंदर से इसका जिक्र करना मतलब ख़त्म हो गया। दैट्स द फर्स्ट थिंक अबाउट दज्जाल। बहरहाल ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करें कि दज्जाल का जिक्र करते ही क्यों हम, वेल दैट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग, इसलिए नहीं कि हम दज्जाल को लेट कर रहे हैं, काश इस नीयत से करते कि जी हमने हदीस पढ़ी है तो इसलिए कर रहे हैं।
अच्छा अभी हम वहाँ पे पहुँचे हैं, हज़रत मूसा के वाक़यात पे पहुँचे हैं, और उसके बाद जो है वो हमने उससे आगे जाना है। आपके ख्याल से कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनको हम उसको उसमें इब्तदा इंतहा में टच करते हुए आगे जा रहे होंगे?
मूसा का तो कॉन्सेप्ट उसी तरह से मैंने डायरेक्ट शिफ्ट करना था सूरह अंबिया पे, फिर मैंने बाइबल और तौरात और कुरान और अहदीस की जो एस्किटोलॉजी की अहदीस हैं उनका ट्रायंगल बनाना था, और उस ट्रायंगल के थ्रू आर्केटाइप डिफाइन होनी थी कि इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट उनकी बाइबल में भी है, और ईसा का तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट क्या उधर तो पूरा मामला बताया हुआ है। तो रायत में इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट है, तो रायत में जो मसाया का कॉन्सेप्ट है वो कैसे है, हमने कैसे देखना है, क्योंकि तौरात का जो मसाया मेरी तो रैशनल भी और बिलीफ सिस्टम भी मेरा ईसा इब्ने मरियम के बारे में ही वो है, मगर काफ़ी सारी निशानियाँ ऐसी हैं जो उनके मसाया की हैं वो ईसा की नहीं है, वो इमाम मेहदी की हैं।
अरे अच्छा,
ये खूबसूरती है इस सारे मामले में, ये बहुत बड़ा ट्विस्ट है। सो ये ऐसा ट्राइंगल, इस पर थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा था कि तौरात की आयतें जो है ना, वो जिस हमने सूरह कहफ़ किया जो جو منظرنامہ ہے وہ بتایا. بالکل اس طریقے سے تورات بھی کافی سارے منظر کشی کرتا ہے اینڈ آف ٹائمس کے اوپر, اور بہت زیادہ کرتا ہے ایکچولی. اور جو اتنے سارے انبیاء آئے جو تورات میں اپنی ٹیسٹیمنی ریکارڈ کر کے, نبی السلام نے کہا نوح علیہ السلام سے میرے تک کوئی ایسا نبی نہیں گزرا جال کی وارننگ دی, تو وہ آدھے سے زیادہ انبیاء تو بائبل کے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نا,
جی جی جی, ٹھیک
ہے, تو وہ بتاتے رہے ہیں, وہ تو کلیئر ہے. اور پھر کیونکہ بائبل میں تو نہیں ہے کوئی پروفٹ نا, بائبل میں تو ہواری عیسیٰ کی کتب ہے, تو وہ بھی بتاتے رہے. دا بک آف ریولیشن تو بھری ہوئی ہے پروفیسی سے, وہ ہے ہی پروفیسیز کی بک, اور اس میں عیسیٰ کی ریٹرن کے وقت کا واقعات سارے کے سارے ہیں. میں چاہ رہا ہوں اس سے بہت پہلے سے ہم قیامت مطلب انتہا کا جو لفظ ہے اس میں اس کا دورانیہ کافی بڑا ہے. حضرت عیسیٰ کے آنے کے بعد تو کہانی مطلب بس تھوڑی سی رہ گئی ہے, مطلب ایک یعوج ماجوج نے آنا ہے اور پھر دابت الارض, دیٹس اٹ. اس کے بعد کوئی میجر نشانی نہیں ہے, پھر اب قیامت ہی آئے گی. دس از کیونکہ پھر قرآن اٹھایا جانا آخری نشانی اور پھر قیامت آ گئی. اس سے پہلے پہلے ہے جو میجر ایونٹس ہیں کہ دجال نے کر کیا رہا ہونا ہے اور امام مہدی کے ٹائم کیا ہونا ہے اور یو نو ویئر از دا قرآن پوائنٹنگ ٹورڈز دس, اور کون کون سی آیتیں اور صورتیں کیا کیا پہلے ہی بتا رہی تھیں. تو یہ ایک ضروری ہے کہ معاملہ ایسا ہی ہو, مطلب ایسے ہی پریزنٹ کیا جائے,
ایسے پریزنٹ کیا جائے. اور اس میں تقریباً کافی چیپٹرز کافی ایپیسوڈز بنیں گے میرا خیال ہے, تو کافی ایک بڑی بڑا کمپریہنسو قسم کا ایک سبجیکٹ ہے.
چاہیں
گے بھی یہ کہ اس طرح کا ایک چیز
10-12 ہاں
ایک اس قسم کی چیز بن جائے جو آگے باقی لوگوں کے لیے بھی اس قسم کی ایک سچویشن بن جائے کہ اس پہ ڈبیٹ ہو سکے. اس کو
جی ہاں صغرا اور کبرا نشانیاں جو ہے نا وہ کیسے دیکھنی ہے تھرو دا گرامر آف کرنٹ نالج, آپ ہمیں جو پتہ ہے اس کے حساب سے دیکھیں, رادر کے بس یو نو وہ ایک لشکر زمین میں دھس جائے گا اور یہ کیا کہ نکل لیے بس, یا پرندوں نے آ کے یاجوج ماجوج کو اٹھا لینا ہے, یہ کوئی بھائی اتنی سی بات تھی, ادھر تو وقت رک جانا چاہیے تھا مسلمانوں کا کہ یہ کیسے ہوا ہے, پرندے نے بندہ اٹھا لیا ہے.
ایک منٹ ٹھہر جائے, ہاں وہی ایک منٹ ٹھہر جائے, یہ کیسے ہوا ہے, پہلے
وقت رک دیں, وقت روک دیں,
روک دیں
اور کچھ نہیں کرنا بس.
ہاں پہلے اس
اور وہ بھی ایسا پرندہ جو اپنا شکار کھاتا ہی نہیں,
وہ پرندہ
جی, کیونکہ انہوں نے یاجوج ماجوج کو اٹھانا ہے اور پانی میں پھینکنا ہے,
پانی میں پھینکنا
ہے, وہ مچھلیاں نہیں ہیں پرندے, ٹھیک ہے, پرندے اپنے گھونسلے میں لے کے جاتا شکار کو, یہ کیا ہو رہا ہے. اور کروڑوں کی تعداد میں یاجوج ماجوج ہیں, وہ مطلب
اتنے ہی پرندے, پھر
پرندے تو آف کورس کم بھی ہو سکتے ہیں, ایک پرندے کی ڈبل شیفٹ بھی لگ سکتی ہے, مگر اس کے ایک دو پرندے تو نہیں ہیں. سو سمجھ لیں بھائی, طرح سے ایک پرندہ بھی ہے سمجھ لیں, بٹ دیٹس ناٹ اے نارمل بیہیویئر, دس از سورہ فیل کی طرح نا. یہ وہ ابابیل ہیں جو کہ ٹیسٹمنی ریکارڈیڈ ہے رب کی, کہ یہ پرندے نہ ہم نے پہلے کبھی دیکھے تھے نہ اس کے بعد کبھی دیکھے, سورہ فیل میں جو پرندوں کا ذکر ہے, ٹھیک ہے. سو بالکل ایسے ہی ایک یہ مطلب وی ہیو ٹو اسٹاپ اینڈ اسٹارٹ ٹو تھنک کہ یہ اس کے اندر نشانی ہے ایک, اور جو بھی یہ سوچ رہا نا کہ یہ تو پھر غائب کی باتیں ہیں یا متشابہات ہیں, وہ نشانی نہیں متشابہات ہوتی, متشابہات سب کچھ ہو سکتا ہے, مگر جہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں میں نشانی ہے ادھر ہم کہیں یا اللہ یہ ایک چیز ہے جو ہم نے غائب میں رکھنی ہے,
وہ تشبیہ نہیں ہے.
جی جی وہ ہی تشبیہ ہوگی تو نشانی کس بات کی,
نشانی کیا رہے گی اس میں,
مطلب اللہ تعالیٰ جب کہہ رہے ہو یہ میری آیات میں سے ایک آیت ہے, سو یو نیڈ ٹو سی اٹ دا وے اللہ از ٹیلنگ یو ٹو سی اٹ. آپ متشابہات کی آیتیں نکالیں اور مجھے بتائیں اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نشانی, مطلب دس از ناٹ کمپریہینڈیبل فار اے مائنڈ لائک می, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھ اور ہم کہیں یا اللہ غائب, کیوں بات ہے غائب, اللہ کہہ رہے ہیں دیکھ آنکھیں کھول, نہیں اللہ آنکھیں بند کریں ہمیں غائب میں رکھنا ہے یہ سب کچھ. تو یہ وہی ہے نا انٹلیکچوئل ڈسکورس, وہ غائب والی آیتوں کو بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں اور ہم دیکھنے والی آیتوں کو بھی غائب کر رہے ہیں,
غائب کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ اسی قسم کی چیز ہے جس سے ابھی بھی بہت ساری بحث چلتی ہے, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی ایج کے حوالے سے بات ہوتی ہے, ساتھ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیگمات کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے, اور بہت سارے اس پہ عجیب عجیب قسم کے کمنٹس بھی آتے ہیں, لیکن شاید ہم ایکسپلین نہیں کر پا رہے یا کیا ہے, ہم کیوں غیر مسلم کو جو ہے وہ چیز نہیں,
سیرہ نہیں پڑھی ہوئی نا. دیکھیں سیرہ تو چلے اس سے بھی پہلے ایک فلسفہ, اسلام کو سب سے پہلے اسلام کا بڑا مقدمہ کیا ہے وہ پہلے بتانا چاہیے مسلمان کرنے سے پہلے بچے کو, کہ بھائی وٹ از دا بگر پرابلم دیٹ یو گون ہیو ٹو سالو, اینڈ فار دیٹ اس عمارت کو کن ستونوں پہ کھڑا کرنا, ایمان کا اصل میں مطلب کیا ہے. سو یہ عائشہ کی ایج والا مسئلہ یا یو نو نبی اسلام کی شادیوں والا مسئلہ یا کسی بھی मामले पे आपके अंदर अगर फिर भी थोड़ी सी कजी है तो ईमान की कजी है,
ईमान की
समझे?
कजी।
सिंपल, मुझे समझ नहीं आती है मुसलमान ये सवाल कैसे करता है कि अताशा की एज कितनी थी। मतलब सोचें कि वो उसके पीछे कहीं ना कहीं तो एक मेंटल डिस्पोजिशन है कि उसको ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि अताशा की एज बताई जाए कि नहीं ज़्यादा थी या कम थी, या मतलब ये डिस्कशन क्या है, वाई वेयर इज़ दिस कमिंग फ्राम? एंड आई नो आई एम अ साइकोलॉजिस्ट सो आई नो वेयर इज़ कमिंग फ्राम। मैं तो मुझे तो पता है तो वो बीमारी है, निकालें इस बीमारी को।
जी आपका वो वाला पॉइंट दोबारा आ गया कि वो समझना नहीं चाह रहे, वो अजीब अजीब से पॉइंट्स निकाल
नहीं,
के
ये
जो है
किसी
वो
ऐसी
अजीब
सोच के ताबे हैं जो कि वो सोच अल्लाह ने बताई हुई है, ये नफाक है।
नफाक है।
जी, अल्लाह ताला हर नबी से एनोमली कराते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हज़रत आयशा की एज और छोटी कर दें बेशक, मुझे कोई फ़र्क पड़ता है? मेरे नबी ने शादी की, मेरे नबी 100 शादियाँ करें। हज़रत सुलेमान की 300 शादियाँ, 600 बांदियाँ हैं, कभी भी नहीं किसी से सवाल किया।
सही
और नहीं, वो तो शरीयत मोहम्मदी में शायद 4 शादियाँ फर्ज से पहले तो 1000 शादियाँ करता था। चलो ठीक है, आप बहुत आसान करके बता रहा हूँ, जब एक बंदा हज़रत आयशा की एज निकालने की खोज लगाएगा ना, वो वहीं से खोटा हो चुका है, क्योंकि वो इस बारे में ये सेटल नहीं कर सक रहा अपने आप को कि मोहम्मद मेरे जैसा क्यों नहीं है। वो यहाँ पे उसको वो कि मोहम्मद मेरे असूलों पे आए, मैं मोहम्मद के असूलों पर जाऊँ? नहीं, मोहम्मद मेरे असूलों पर जाए। तो नबी तो आपके असूलों पर नहीं आने वाला, वह नबी है। ठीक है, सो मैं आपसे फिर बता दूँ कि अल्लाह ताला ने जान के नॉमलीज देनी होती हैं ताकि नफाक जाहिर हो जाए कि
और
जो
नबियों
मुसलमान
पहले
बनते
पहले
फिरे आओ ना दिखाओ।
के अंबिया पे भी ये ऐसे होता
जी
रहा
जी
है।
मैं वो बताता हूँ, मेरा खैर बहुत लंबी तफसील में कर चुका हूँ कि एक बंदा बैठ के आपको कहे ना कि इरफान साहब हज़रत मरियम की क्या पता शादी हुई भी हो और ईसा से पैदा हुए, तो आप उसके बारे में क्या राय रखेंगे? क्योंकि और मैं कहूँगा भाई तू क्यों हज़रत मरियम की शादी करवा रहा है?
क्यों करवा रहा है शादी?
मतलब नहीं, वो क्योंकि ये लोगों को मैंने कन्विंस करना है कि नहीं, लोग बहुत एतराज़ कर रहे हैं। ऐसे बंदे के ईमान का मैंने क्या अचार डालना है? आपको मैं आसान सा टेस्ट बताता हूँ, जो बंदा आपको ये कन्विंस करेगा कि मरियम की शादी हुई भी थी फिर अतीसा पैदा हुए थे, तो वो पता किनको खुश कर रहा है? वो यहूदियों को खुश कर रहा है
वो
और इसके
पूरे
अलावा और
पूरी
किसी को खुश नहीं कर
पूरी
रहा।
फिलोसफी
बाकी
थी
हम सब
उसकी।
सेटल्ड हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है कि मरियम की शादी नहीं हुई भी थी,
हाँ
ना ईसाइयों को ना
ना
मुसलमानों को, ये
मुसलमानों
सिर्फ यहूदियों को एतराज़ है। तो अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पेश आ रही है तो फिर आप यहूदियों के ताबे हुए हैं ना, उनको खुश करें, अल्लाह को तो नहीं खुश करें। ये है वो कजी, ये वो नफाक।
और वो ऐसे एक्सपोज होता
जी, इसी तरह
ये
अल्लाह ने यही तो एक्सपोज करना है।
ये लिटमस टेस्ट
जी,
है
लिटमस
किस्म
टेस्ट
का,
है,
एक
अगर
किस्म
जैनब से
का।
शादी करा कर लिटमस टेस्ट था कि बीच में से निकलो ना छुपे हुए मुसलमानों के रूप में निकला है। ठीक है, आयशा के साथ उस वक्त नहीं कोई मसला हुआ, एक दफ़ा भी एतराज़ नहीं हुआ
नहीं
रब को।
हुआ
अब लेकिन नफाक अल्लाह ने, देखें कि आयशा का एक और एहसान हम पे, क्यामत तक के मुनाफिक निकाल दिए।
वो एक लाइन
लाइन
खींच
खींच देखिए, इधर आते
इधर इधर
और
वाले
इस्माइल को
वाले
इब्राहिम ज़बह कर रहा है, किसी को एतराज़ नहीं।
राज में
सुना, सोचें क्यों? क्योंकि इब्राहिम को नबी मानते हैं।
वहां पे सुबहान अल्लाह हो रहा है
जी
और
जी
इसमें
ओ
क्या
अल्लाह
हो
अकबर, अल्लाह की निशानी। अच्छा, तो बेटा ज़बह करना मतलब बच्चे को कत्ल कर देना, क्या ये आपने इसको एक्सप्लेन क्यों नहीं किया कि नहीं, वो असल में हज़रत इब्राहिम को पहले से पता था? ऐसी कोई कहानी डालो ना, वो डाले ना फिर कोई, मैं भी मानूँ कि किसको खुश कर रहे हो,
किसको
क्योंकि
खुश
ना वो
कर
यहूदी बनते हैं, ना वो ईसाई बनते हैं, ना मुसलमान बनते हैं, क्योंकि ये तीनों कहते हैं हमें कोई एतराज़ नहीं, इस्माइल ज़बह हो गया, हमें कोई एतराज़ नहीं, तो किसको किसी और खुश करेंगे? बिल्कुल इसी तरीके से आयशा की एज बढ़ा बढ़ा के मुझे भी बताएं किसको खुश कर रहे हैं, हु आर यू ट्राइंग टू प्लीज? इज़ दैट सिंपल? क्योंकि नबियों के ऊपर वो वाले असूल वलगार हैं जो आपके आपके ऊपर लगे हुए थे, इसका मतलब नबी को खींच के नीचे ला के अपनी तरफ लेके आना चाह रहे हो, तो नबी तो ही नहीं आने वाला नीचे। मुझे तो, मैं तो ढूंढता हूँ अनोमलीज़ कि ईमान टेस्ट हो, कोई ऐसा वाकया हो, कोई सीरा में मिले, कोई कुरान में मिले, जो बंदा कहीं एक्सप्लेन ही नहीं हो सकता, तब कहीं जाके ईमान ईमान में आता है ना, वरना क्या यकीन करते फिर रहे हो? यकीन का नहीं है इम्तहान, ईमान का इम्तहान है कि इस्लाम पे ईमान लाए थे कि नहीं। या यो लजीन आमनू आमिनू, कि खाली बातें नहीं चलेंगी, चल शाबाश पूरी तरह अंदर आ। अल्लाह ताला ने कहा यार या रसूलल्लाह के ऐ मोहम्मद, इनसे कहें इस्लाम में दाखिल हुए, ईमान नहीं लेके आए अभी।
ईमान नहीं लेके आए।
तो ये बैनर लगा के नहीं कुछ होने वाला उधर?
हाँ अभी सिर्फ आपने ब्रांड एंडोर्स किया है,
जी
अभी
हाँ
आप
या
उसमें
यार
पूरे का
मोहम्मद
पूरा
इस्लाम
इन्वॉल्व
लाए
नहीं उसके
हैं,
अंदर।
ईमान नहीं लाए। और फिर एक तरफ अल्लाह ताला ने दूसरी तरफ कहा कि ईमान वालों पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल
इस्लाम
हो
में
जाओ,
दाखिल हो जाओ।
शाबाश।
नो कन्फ्यूजन,
जी
नो इफ्स
जी
एंड बट्स एंड एनीथिंग।
जो भी स्कॉलर ये कह रहा है ना कि वो जी नहीं हमारे पास डेटा मिल गया आयशा के, तो भाई डेटा ढूंढ क्यों रहा था जो तुझे मिला है?
ओए
ये है असली सवाल,
असली मसला।
तुझे और मसाइल कम थे जो ये वाला डेटा ढूंढने के लिए इतना टाइम लगाया तूने?
अच्छा, ये जो मसाइल है आपके से यहाँ पे ज्यादा नहीं है, आप जब पाकिस्तान से बाहर जाते हैं या जब पाकिस्तान में भी लाइन
जी
खींची
जी
जा रहा हूँ, यहाँ के जो मसाइल हैं आप अपने मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थॉट्स में उलझे रहते हैं, उनके साथ ही फटे करते रहते हैं, बाहर जाते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि आपको यहूदियों के साथ भी फटा करना है, आपने क्रिश्चियंस के साथ भी फटा करना है, उनके साथ भी बात करनी है, यहाँ आके इसी में हम
यहाँ ये इस छोटी इसको इंफीरियर साइकोलॉजी बोलता
आपस
हूँ
में
मैं,
ही हाँ
इंफीरियर
उलझते
साइकोलॉजी
रहते
वो,
हैं।
सुपीरियर साइकोलॉजी में मैंने आपको बता दिया, कुरान पाक ने बता दिया कि अगर हम पॉलिटिकल फतह में आ गए ना, ये सारे गैर मुस्लिम भी कह रहे हो कि नहीं हज़रत आयशा 6 साल की थी भाई, अगर हम फातह हो गए तो
फाते
ये
हो गए
मफतू
तो
हों के ऊपर ये मसाइल आते ही आते हैं इस तरह
उनको
के,
एक्सप्लेन करना पड़ता है, अपने एग्जिस्टेंस
अपनी
को
छोट
साबित
अपना हाँ
करना
अपनी
पड़ता
बीमारियां ना,
है,
फिर
अपने
अपनी
पुत्र
ये यहाँ
उसमें।
के वो अपने छोटे खुदा बना लेते हैं ना इन्होंने, इनको अमेरिका को या एथीज़म को या
हाँ,
साइंस को खुदा और लॉजिक को खुदा बनाया
लॉजिक को
हुआ
खुदा
था।
बना,
बेटा आ जा फिर, और लॉजिक तोड़ने का नाम नबी होता है, लॉजिक
अल्लाह अकबर, वाह वाह वाह,
पे तुम्हें इतना ही नहीं समझ आया
सुभान
नबी क्या होता
अल्लाह,
है, तुम
वाह
लॉजिक के तौर कर रहे हो नबियों को, कोई एक नबी बताएं मैं आप बताता हूँ ये लॉजिकल काम कैसे किया उसने, लॉजिक नहीं तोड़ेगा तो नबी किस बात का, सोचे जरा।
वो तो सिस्टम
हाँ
का हिस्सा बन गया
हाँ
ना
तो
फिर,
तुम्हारे
अगर
ताबे उन्हें आए नबी
उसमें
कि हाँ जी तुम्हारे लॉजिक भी पूरा उतरे, वो तो जान के अल्लाह ऐसे काम कराते हैं कि भाई
अकबर,
तू 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 करके दिखा ताकि ज़रा ईमान वाले और बयान वाले ज़रा बाहर हो
बयान
जाए
वाले सेपरेट
कि
हो
जी
जाए।
हाँ तुम तो खाली बोलते थे, आओ ना ज़रा। सो इस और मेराज के वाक्य अभी इन्होंने ख्वाब में डाल दिए ना, सो सोचें हर चीज़ के ऊपर नकब लगाएंगे क्यों किसी, बताओ। फिर सिंपल सा सवाल है, मैं दोबारा से पूछता हूँ, हज़रत आयशा की एज को चेक करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट क्यों किया था, वाई डिड यू हैव टू लुक फॉर इट, हज़रत आयशा की उम्र कितनी है, ना सोचें
जरूरत क्यों
नबी के
पेश
ऊपर
आई,
मुकदमा करने के लिए
अल्लाह अकबर,
जो एनर्जी चाहिए थी ना आपको, वो एनर्जी है ये आपको नज़र नहीं आ रही। बहरहाल अब मुझे पता है आर्गुमेंट्स, मैं तो नफ्सियात से वाकिफ़ हूँ ना, वो नहीं साहिल साहब वो चाइल्ड मैरिज वाले फिर ये बहाना करेंगे, वो तो कुरान से निकालते हैं, सूरह तलाक की आयत पढ़ें, 11 आयतें टोटल पढ़ लें, आपको पता चलेगा किस उम्र में शादी अलाउ है किस में नहीं, इसके लिए नबी इस्लाम तक क्यों आ रहे, अल्लाह ने हुक्म दार नाजिल किया हुआ है कि शादी की एज क्या हो सकती है क्या नहीं हो सकती। सो डोंट डोंट गिव मी दैट, किसी आपका ना वो जो मैं कहता हूँ ना गलत मुसलमान से पाला, आपका सही मुसलमान से पाला पड़ गया है, समझ रहे हैं आपको मेरे आगे नहीं चलने वाली कहानियाँ, सूरह तलाक नहीं पढ़ी हुई और चाइल्ड मैरिज की कहानियाँ सुना रहे हैं हदीसों से और ताइशा की एज
और
से।
एक्सप्लेन कर रहे
जी
थे।
सूरह तलाक पढ़े आपके तोते ना उड़े ना, मुझसे रुजू कीजिएगा, ठीक है, पूरा ईमान लाएं, ये है असल में कहानी। अब रही बात इसके रिपरकशन कैसे इस्तेमाल हो सकते नहीं हो सकते, और मतलब इसका गलत इस्तेमाल क्या करने वाले हैं, तो वो तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कौन से आयत से शुरू करूँ, कौन सी सूरत से शुरू करूँ कि जो मुनाफिकों ने कुरान के थ्रू गलत इस्तेमाल किए हैं, वो तो फिर उसकी उसकी वो तो बीमारी ही और है,
इट्स नॉट जस्ट वन, वो तो हर चीज़ पे,
वो
हर
तो बीमारी ही
मौके
और
पे,
है।
मौके
हाँ
पे
मैं मुझे
प्रिसाइज
याद है
होना
वो
चाहिए।
कादियानियों ने कुरान से अपना वो खातिम को ख़त्म करके नबी
हाँ
निकाल लिया है, आए आ जाते हैं फिर इस्तेमाल करने पर आए तो, और लोग हर बंदा कुरान से निकालने के लिए तो तैयार है, अल्लाह ताला ने तो यही कहा था कि ये उनके लिए किताब है, ला रईब फीह हुदल्लिल मुत्तकीन, वरना इसमें शक ही शक है, ये सिर्फ ला रईब फीह तब है जब आपके अंदर तकवा है तो,
तकवा है, अल्लाहु
वरना नहीं है
अकबर,
ला रईब फीह, अल्लाह ताला ने कुरान से गुमराह जब करना हो तो कुरान से ही कर देते हैं, अल्लाह ताला ने कहा है कि बस सिर्फ अल्लाह ही है जो हिदायत पिलाएगा, वरना ये गुमराही भी अल्लाह ही करते हैं कि तू बहुत ज़्यादा तेरी बीमारी है तू ला तेरी बीमारी बढ़ाऊँ मैं, अल्लाह ने खुद सूरह बकरा में कहा है इनके दिल में बीमारी है और मैं इस बीमारी को बढ़ा रहा हूँ,
बढ़ा,
कि तुम बदनीति से आए हो मेरे पास,
बस फिर उसी
ये
में
सूरह बकरा
फिर
स्टार्ट हो रही है ऐसे कि इनके दिल
असफलसाफिलीन
में
वाली
बीमारी है और हम
सिचुएशन
इस
हो
बीमारी
जाए।
को बढ़ा देते हैं कि तुम
हाँ,
टेढ़ी आँख रख के आए हो कुरान पे, शाबाश आओ ना फिर तुम्हें बताते
उसी
हैं,
में घुमाई जाऊंगा, घुमाई
जी जी
जाऊंगा,
वो
घूमेंगे
आँखें फिर ऐसी घूमेंगी वो टेढ़ी आँख
वही
की
ना
आए तो
वो सारा।
फिर ये इतना आए तो फिर देख लेते हैं कितना ईमान बचता है आपका कितना नहीं, सब फैशन नहीं चलेगा, या पूरे आए या भाग जाए।
एक लोहे महफूज के वजह से भी हमेशा बात होती है उसमें, कि वो कितना किस हद तक इंसान को अपना इख्तियार है और किस हद तक जो है वो अल्लाह ताला ने उस पर इख्तियार रखा हुआ है,
इख्तियार
उसको
तो
मालूम
इंसान को उन उन चीज़ों का है कि जिन मतलब जिस तीन सर्कल हैं, एक तो आउटर सर्कल है जिसका इसका हम जैसे सितारे कितने हैं तो बैलेंस ऑफ द यूनिवर्स क्या है, जिसकी वजह से मैं और आप बात कर रहे हैं इस
बात
वक्त,
कर
बात
रहे
कर
हैं,
रहे हैं, इसके लिए कई खरब सितारे अपनी अपनी जगह पे मौजूद हैं,
पोजीशन करके उसको, इसको
वरना
संभाल
ये
के,
ज़मीन
संभाल के,
ये
हाँ
पूरा
बिल्कुल
सब
बिल्कुल
वरना ये पूरा बैलेंस
उसमें,
है,
हाँ,
अंदर का सर्कल है जिसके अंदर हमारी ये जो यू नो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी सांस अपने कंट्रोल में नहीं रख सकता, दिल की धड़कन मेरी वजह से नहीं चल रही,
नहीं चल
ठीक
रही,
है, ہزار میں اور آپ ملاقات جو کی وہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی ہوئی, ٹھیک ہے, مینی بلینز آف تھنگس ہیپن تب کہیں جا کے میں اور آپ پہلے دفعہ ملے تھے.
بالکل, اوکے.
سو یہ ہمارے معاملات ہمارے ہاتھ میں نہیں. اب جب ہم اس سرکٹری کو سمجھ لیتے تب اس کے اندر کا سرکل ہمیں نظر آتا ہے کہ اچھا اب ہوگ اس سرکٹری کے اندر آ کے جو میرے امپیکٹس ہو رہے ہیں اس کے ساتھ میں نے ریئیکشن کیا دینا ہے, یہ ہے آپ کا اختیار. تو یہ تین رمز ہیں, ایک آؤٹر رم, انر رم اور ایک ان موسٹ. اس کے اندر ایک چھوٹا سا بے اوقات سی مخلوق ہوں میں, اور باتیں میری اتنی بڑی ہیں کہ میں یو نو قرآن بھی غلط ہے تو یو نو کوئی خدا بھی نہیں ہے تو یو نو یا پھر یو نو میرے بس میں میرے بچے کا فیوچر بھی ہے یا میرا اپنا اگلا دن بھی ہے, یہ بھی دیکھیں کبر ہے میرے اندر کہ اگلا دن بھی میرے بس میں. سو اٹ از دیٹ سمپل کہ سوال اس چھوٹے سے سرکل کا ہو رہا ہے اور اس کے اندر ہم بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو مطلب اتنا پاورفل پروو کرنے کی کوششوں میں.
اور جو لوہے محفوظ ہے وہ یہ سارا سارا سسٹم اس کے اندر ہی آتا ہے.
جی ہاں, نہیں آؤٹر موسٹ سرکلس تو ایز ایزی رہیں گے, ٹھیک ہے, انر موسٹ سرکل کی پرمیوٹیشنس ساری لاکڈ ہیں, جتنے مرضی سے ہو کے وہ پہنچ جاؤ. جیسے فار ایگزامپل 50 نمازیں ہر مسلمان پہ فرض ہیں, فرض ہیں
50
ہر 15-12 منٹ بعد ایک نماز پڑھنی ہے ہم نے, ٹھیک ہے, یہ فرض ہیں. اب اس کو کچھ چینج نہیں کر سکتا. اب جب نبی علیہ السلام سے آخری دفعہ نیگوشیشن ہوئی نا, موسیٰ کے کہنے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ تھوڑی اور کم کر دیں, تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ میں کم نہیں کر رہا, رہیں گی 50 ہی,
رہیں گی 50,
ہاں 50 ہی فرض. اب ان کی ٹرانسلیشن میں تمہیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک کے بدلے 10 کا میٹر آن مطلب فارمولا ملٹی پلائی بائی 10 کر دیتا ہوں کہ اتنا میں تمہیں اجر دے
گے تو 10 ہو رہا ہے,
اس لیے 5 کر رہا ہوں, ورنہ میری لوہے قلم نہیں چینج ہو رہی. یہ اللہ تعالیٰ کا ڈائریکٹ ارشاد ہے کہ اتنا 50 ہی رہے گی. اب ظاہر ہے اللہ تعالیٰ لوہے قلم کا کوئی تابع تو نہیں ہے نا, تو اللہ تعالیٰ نے پھر خود انٹروینشن کر کے ویٹو کیا کہ ہاں لوہے قلم میں لکھ دیا تھا, یہ میری شان میں نہیں ہے کہ میں ایک لکھوں اور چینج کروں, ٹھیک ہے. سو آئی ول ری ٹرانسلیٹ اٹ فار یو او محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ تیرے پیار میں ری ٹرانسلیشن کر رہا ہوں, مگر اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ میں ریئیکٹیو ہو جاؤں. ریئیکٹیو تو نہیں, 50 ہی ہیں بس, یہ ہو چکی. سو نماز دیکھیں 50 ہی فرض ہیں ابھی بھی. اب یہ لوہے قلم میں آؤٹر ریم میں 50 نمازیں فرض ہیں ہمارے اوپر, انر ریم میں ٹرانسلیشن کیسے کی جا رہی ہے.
اور اس میں سے اگر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو 10 نماز,
نہیں یہ نہیں دیکھنا آپ نے ایک مس کی تو 10 کتنی مس کرتے ہیں, یہ ہے اصلی طریقہ دیکھنے کا. آپ 10 نمازیں مس کرتے ہیں وہ بھی لوہے قلم کی, سوچیں ذرا بدبختی کی انتہا. یہ نہ سوچیں ہمیں کتنے کا اجر مل رہا ہے, ہم کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں,
کتنا لاس ہو رہا ہے جی ایک چھوٹی سی اس پہ.
جی ہاں, اٹ از دیٹ. میرے کو استاد ایک کہتے تھے, کہہ رہے تھے قضا نماز ایک نماز ہے اور اپنی نماز 10 ٹائم پہ پڑی ہوئی 10 ہیں,
10 ہیں
وہ, یہ اس کے کہتے تھے کہ یہ دیکھ لے پھر قضا کرے گا تو وہ 10 والا ثواب نہیں ہوگا, وہ ایک والا ہی ہوگا.
وہ بھی کس نے کہا تھا کہ نمازیں جو ہیں وہ ساری کی ساری وہ اس کی قضا کوئی نہیں ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک لیوریج دیے کہ چل
جی جی میں
بھی بعد میں پڑھ لے, تھوڑی لیٹ پڑھ لے چل کوئی نہیں خیر ہے, لیکن ٹائم وہ
نماز میری نا ایک چھوٹا سا جملہ پھر ایکسپلینیشن میں نہیں دے سکتا اس طرح. نماز ایک ٹیکنالوجی ہے, اصل میں ٹیکنالوجی ہے, یاد رکھیے گا, نماز از این ایکچوئل ٹیکنالوجی. یہ مسلمانوں کو ایز اے ٹیکنالوجی ہی ملی تھی, ہم اس کو ایز اے ٹیکنالوجی دیکھتے نہیں ہیں. اگر اس کو ٹیکنالوجی دیکھیں گے تو ٹیکنالوجی کے طور پہ استعمال بھی کریں گے, اور پھر دیکھیں ایک سنگل انڈیویجول اینڈ اے گروپ کے اندر معاملات کس طریقے سے چینج ہوتے ہیں, مگر ہم نے دیکھنی نہیں ہے ٹیکنالوجی کے طور پہ. اٹ واز اے گفٹ آف اللہ عز و جل. اور جس طرح قرآن پاک جو ہے نا, اٹ از دا ایکچوئل مینیفیسٹیشن آف دا ریالٹی آف دا یونیورس, اٹ از ممکنگ دا ریالٹی آف دا یونیورس رائٹ ناؤ. تو قرآن از ڈوئنگ اٹ رائٹ ناؤ, وی آر ناٹ لوکنگ ایٹ اٹ, ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں قرآن پاک کو ایسے, کہ اتنی طاقت ہے اس کتاب میں. بالکل اس طریقے سے نماز جو تھی ایک اس مطلب اس سپیریئر ٹیکنالوجی, اٹس ناٹ لائک کہ عام سی کوئی ٹیکنالوجی, وہ بھی بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہم اس کو دیکھیں, مگر اس سپیریئر ٹیکنالوجی وی کین میک اے لاٹ آف چینجز
پورا گیجٹ
ان دا پلانٹ. نو نو, گیجٹ ایک چھوٹی
چیز,
گیجٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے نا وہ ٹیکنالوجی ہوتی ہے, کہ وہ کس طریقے سے کیا پاور لے کے آتا ہے. وی کین میک بگر چینجز ان دا پلانٹ تھرو دس, بٹ ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی, بس ہم نے سمجھا کہ
اگر کھولتے ہیں تو کس طرح سے آپ اس کو ایکسپلین کریں گے.
میں آپ کو اتنی سی بات بتاؤں کہ آپ نے اگر اس جملے کا مطلب سمجھنا ہے تو نماز خوف پڑھیں, کہ نماز خوف کیوں فرض ہوئی تھی اور کس موقع کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ نے احکام, مطلب سوچیں کہ ہر چیز اسلام کی آدمی کی جان بچانے کے لیے, ٹھیک ہے, ہر چیز اسلام کی جان بچانے کے لیے ہے, اور اس میٹرکس میں نماز خوف جو ہے نا وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں جاتی ہے کہ تیرے پہ تین چل رہے ہیں نماز کے لیے کھڑا ہو جائے، اپنے آپ کو نہ بچا، چل کھڑا ہو نماز پڑھ. سوچے یہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے ہیں نماز کو صحیح اینگل سے، اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں، ہم خود آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. یہاں تک کہ جب نبی اسلام نے شاہ فرمایا، صحابہ کو سمجھ آ گئی تھی اس کہانی کی ساری، نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دجال جب آئے گا تو پہلا دن ایک سال کا ہوگا، ٹھیک ہے، دوسرا ایک مہینے کا ہوگا. صحابہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یا رسول اللہ یہ کیسے، پہلا سوال کیا پوچھا، یا رسول اللہ پھر نماز کا کیا کرے گا،
نماز کا کیا بنے گا،
اور اس کے اوپر کیا جواب آیا میرے نبی کا کہ پھر اندازے سے نماز جاری رکھنا، نماز نہ چھوڑ دینا کہ ایک دن ہے تو پانچ، اس کو 365 سے ملٹی پلائی بائی پانچ کرنا، یہ نہ ہو کہ ٹوٹل پانچ کر دو.
اور وہ پانچ نہیں، ایک سال میں پانچ نہیں پڑھنی، ٹوٹل پانچ نہیں، ہاں اس طرح سے کرنی
کہ یہ ٹیکنالوجی تمہارے ہاتھ میں رہنی چاہیے. ہم دیکھ نہیں رہے اس کو ٹیکنالوجی کو، مطلب ہم سوچ نہیں رہے.
صحابہ کو اور کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ ایک دن سال کا کیسے ہو جائے گا، تو کیا باقی سسٹم کیا
ہے، انہوں نے پوچھا ہے سارا کچھ تفصیل کی ہے بعد میں. سب سے پہلے سر، پہلے نیوکلیئر ٹیکنالوجی کا تو مطلب اتنی بڑی پاور آ رہی ہے، اس کی پاور کیا بتائی ہے نبی اسلام نے، اور مسلمانوں کی پاور کیا بتائی ہے جی، اور یہ ہم دیکھ ہی نہیں رہے. میں نے آپ سے کہا نا، ہمیں ایک دفعہ بس اپنا نبی پہچان لیں ہم، میں تو پھر اسلام سمجھ آئے گا، اسلام سمجھ آئے گا پھر پتہ چلے گا سپیریئر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے.
وہ اختتام میں اکثر ایک شعر پہ کرتا ہوتا ہوں، ظاہر نگاہ کا میں کلا، اس پہ بھی وہی چیز بنتی ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی حساب نہیں بے حسابیوں کا، مگر جسے بھی دیکھیے الجھا کسی حساب
حساب.
اگلے پروگرام دیکھ لیجیے، اجازت دیجیے، پاکستان زندہ باد.